ये आकाशवाणी है, अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में सैन्य विमान C-295 के निर्माण के लिए बने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। ये भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है, जिसमें विमानों के कलपुर्जे जोड़कर उन्हें अंतिम रूप से तैयार किया जाएगा। टाटा के अतिरिक्त भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसे रक्षा क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भी इसमें अपना योगदान करेंगे। वडोदरा पहुंचने पर दोनों नेता रोड शो करेंगे और उसके बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में चिंता व्यक्त की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट गैर कानूनी और धोखाधड़ी है, जिसे रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वर्ग और आयु समूह के व्यक्ति इसके शिकार हुए हैं, जिससे उन्हें लाखों रूपये गंवाने पड़े हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे फर्जी कॉल से भयभीत न हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में गेमिंग की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा है और भारतीय खेल दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस ने आगामी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने सचिन सावंत की जगह अंधेरी पश्चिम विधानसभा सीट से अशोक जाधव को उम्मीदवार बनाया है। संदीप पांडे नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र से और दत्तात्रेय बहिरथ शिवाजीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मंगलवार तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उधर अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने 9 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। दोनों पार्टियों ने अब तक 76 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए निर्धारित 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की जाएगी। नई दिल्ली में कल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने घोषणा की कि चावल मिल मालिकों की शिकायत का निवारण करने के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की जाएगी, ताकि हितधारकों की किसी प्रकार की कठिनाई का समाधान समय पर किया जा सके। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। कुल 805 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। पहले चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। उत्तर रेलवे ने त्योहारों पर रेल यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर रेलवे के अनुसार फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफार्म नंबर 16 पर प्रवेश बंद कर दिया गया है। प्लेटफार्म 16 के लिए आरक्षित यात्री केवल अजमेरी गेट साइड सर्कुलेटिंग एरिया से गेट नंबर 7 और 10 से प्रवेश कर सकते हैं। वहीं जनरल टिकट वाले अनारक्षित यात्री केवल अजमेरी गेट की ओर से गेट नंबर 12 से ही प्रवेश कर सकते हैं। लद्दाख के बागवानी क्षेत्र ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। करगिल की एक स्वदेशी सेब की किस्म किरकिचू सेब की पहली खेप निर्यात के लिए दुबई रवाना हुई। करगिल के एक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और रंग्यूल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आरओपीसीएल द्वारा आयोजित एक मीट्रिक टन की खेप को एपिडा और लुलू ग्रुप के सहयोग से ये सुविधा प्रदान की गई है। अहमदाबाद में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने भारत की महिला क्रिकेट टीम को 76 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।